राजयोगिनी गोपी बहन का हम सभी एक हाथ की ताली से अभिवादन करेंगे। आज विशेष विषय है साधना का परम सुख, जो हम संगम युग में ही ले सकते हैं। न तो हमको कलयुग में साधना करनी आती थी और न ही हम सतयुग में करेंगे। तो अपने विषय में वो जाएं उससे पूर्व उनका परिचय दे देना चाहूंगी। गोपी बहन, आपका जन्म अफ्रीका में हुआ और उनका लालन पोषण यूके और भारत में हुआ। 1977 में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और 8 वर्षों के गहन साधना के बाद आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीणता प्राप्त की, जिन्होंने यज्ञ के आरंभिक रत्नों से मार्गदर्शन पाकर आत्मिक परिवर्तन की गहराई को समझा और इसे अपने जीवन में आत्मसात किया। विश्व भर में यात्रा कर विभिन्न मंत्रालयों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देती रही, जहां वे आत्मिक जागरूकता को सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा संस्थागत सफलता के लिए आवश्यक तत्व के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल यूथ फोरम की स्थापना और संचालन भी शामिल है, जो 49 देशों के लगभग 8,000 युवाओं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने का कार्य कर रही हैं। वर्तमान में राजस्थान स्थित ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा परियोजना का निर्देशन कर रही हैं। इसमें हाल ही में एक नया बायोगैस सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया है, जो ग्रामीण राजस्थान में अपनी तरह का पहला है। और आप यहाँ रह कर के भी पूरे विश्व में ऑनलाइन सभी की क्लासेस भी लेती रहती हैं और मीटिंग्स भी आपकी चलती रहती हैं। हम सभी जानते हैं सभी देशों में समय अलग अलग होता है, इसलिए उनका विश्राम का समय शून्य है। फिर भी आप सभी का डिमांड था कि गोपीबेन क्लास कराएं और उनको कहा गया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। राजयोगिनी गोपीबेन, ओम शांति। जब सच्ची दिल की भावना होती है तो हाँ बोलने में बहुत सहज होता है। आपकी भावना ने हमारे मुख से जल्दी हाँ बुलवाया। जैसे मैं पैदल आ रही थी यहाँ पे तो मैं सोच रही थी कि साधना और पुरुषार्थ में दोनों अलग अलग टॉपिक्स है, फर्क क्या है? शब्द भी अलग है, भाव भी अलग है, तो फर्क क्या है? बताइए, सोचो जरा। पुरुषार्थ और साधना, साधना अपने लिए होती है, पुरुषार्थ औरों के लिए होती है। दोनों अपने लिए होती है जी। क्या पुरुषार्थ जर्नी है और साधना डेस्टिनेशन है? एक्चुअली अदर वे राउंड, पुरुषार्थ लक्ष्य है और साधना जर्नी है जी। साधना में मेहनत नहीं है, पुरुषार्थ में मेहनत है। क्यों क्यों? साधना क्या?
नहीं, साधना क्या? साधना एक जगह पे बैठ के कर सकते, लेकिन पुरुषार्थ चलते फिरते. हाँ, दिस इज अ नाइस डिफरेंस. और सोच चलाओ इसके ऊपर, क्योंकि ये गहरा सब्जेक्ट है. पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, लेकिन साधना बहुत कम लोग कर रहे हैं. अच्छा, साधना जो सत्य स्वरूप है उसको धारण करते हैं, और पुरुषार्थ अप डाउन होता रहता है पुरुषार्थ में. जी, पुरुषार्थ आत्मा की उन्नति के लिए है, खुद को जानने के लिए है. जो साधना है, जो हमारे कुछ सामने है, जो हम साध कर रहे हैं. देखो, पुरुषार्थ वैसे लक्ष्य के साथ संबंधित है. पुरुषार्थ जब हम कुछ लक्ष्य होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होती है, तभी हम उस चीज को एम रख करके कहेंगे मेहनत करे हैं पुरुषार्थ. लेकिन साधना एक विधि होती है, एक साधन अपना के उस एम तक पहुंचने के लिए जाते हैं ना. ठीक है, अभी हमारी रूहानी यात्रा में तो स्थूल साधनाएं तो नहीं है, साधन तो नहीं है स्थूल साधन. हमारे जो साधन है वो सूक्ष्म साधन है. वो क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार और बाबा का साथ, सब सूक्ष्म साधन है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. तो हम जब ब्राह्मण जीवन में आते हैं और बाबा हमको लक्ष्य देते हैं, ठीक है, बच्चे कंबाइंड फॉर्म में रहना है, बच्चे बाप समान बनना है ना, तो लक्ष्य बड़ा अच्छा लगता है. हाँ, थोड़े सेकंड में, क्षणों में जब वो प्यार मिलता है तो ऐसे लगता है हाँ बाबा मुझे ये प्रेरणा है, करना है. लेकिन जब तक सही विधि नहीं अपनाई है और अपने सूक्ष्म साधनों को उस विधि प्रमाण नहीं चलाया है, तो आपकी साधना सरल नहीं हो सकती है. इसीलिए कहते हैं चलो पुरुषार्थ तो करते हैं, एम रख करके जैसे भी, बस जैसे आए, लेकिन बिना विधि से पुरुषार्थ हो रहा है. इसीलिए जैसे गाड़ी स्टॉप स्टार्ट होती है ना, तो पुरुषार्थ में भी किसी के धक्के से चलना पड़ता है. तो अभी साधना के ऊपर जब हम टॉपिक शुरू करते हैं तो हमारे सूक्ष्म साधनों के साथ कनेक्शन है. और जिस तरीके से हम मन बुद्धि को चलाते हैं और जहां तक हमने अपने स्वभाव में सरलता लाई है, क्योंकि सरल स्वभाव होता है तब श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज होते हैं. जब स्वभाव बहुत टाइट होता है तो आपके डिविनिटी, डिवाइन संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं. वो जो ट्रुथ वाले संस्कार से ओरिजिनल, वो आपके लिए काम नहीं करते हैं. तो भले आप जितना भी अच्छा सेवा करो, जितने भी घंटे योग में बैठो, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएंगी, ऐसी समस्या आएंगी, जट रिएक्शन में आ जाएंगे. तो रियल साधना को कवर करना है तो इन तीनों को लाइन में लाना है. ठीक है, अभी हम जो पहला सब्जेक्ट, ये जो इस मास में जो कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड स्वरूप का बाबा ने बहुत जोर दिया है, ये वर्तमान समय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है. क्योंकि मुझे याद है ये बातें दादी के साथ चर्चा करने में निकली है, बाबा की मुरलियों से भी निकली है, अभी मोहिनी दीदी के साथ जो बीच में चर्चा हुई थी कि बाबा ने चार प्रकार के कंबाइंड स्वरूप की परिभाषा दी है। और जो हम अपने साधन में, माना अपने साधना में इन चार प्रकार के स्वरूप धारण करें, तो पुरुषार्थ बहुत ही इजी हो जाता है। पहला और सबसे पहला फाउंडेशन है जो अनादि काल का कंबाइंड स्वरूप है, वो है आत्मा और शरीर का। दोनों अनादि काल तक रहे हैं ना कंबाइंड, लेकिन आत्मा और शरीर का कंबाइंड स्वरूप दोनों समान लेवल पे नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा मास्टर है, आत्मा क्रिएटर है, शरीर क्रिएशन है। तो इस कंबाइंड स्वरूप में भी संबंध को ठीक करना है। क्या है, हम देह भान में आकर के हमने कर्मेंद्रियों का रस बहुत लिया है, तो हम उसको समझते हैं कंबाइंड। जो खाने अच्छा लगता है तो मन को भी अच्छा लगता है, तो जो कर्मेंद्रियों से रस उठाया है उस अनुसार फिर काम में चले गए, उसका रस लिया, तो हमने सोचा प्यार की भी परिभाषा बदली तो उसका भी रस बैठा है, तो हम सोचते हैं वो कंबाइंड है। वो कंबाइंड का अनुभव नहीं है, वो है गुलामीपन, गुलाम बनना। जब तक आत्मा अपनी सीट पे बैठ करके कार्य नहीं करती है, इस शरीर को नहीं चलाती है, तब तक आप ये अनादि स्वरूप का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ये पहला करेक्शन बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, जब बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि बच्चे, बच्चे और बाप का कंबाइंड, तो हम देह भान का स्वाद लेकर के सोचते हैं हम बाबा के साथ भी ऐसा प्यार का कंबाइंड अनुभव करें। समझ में आई बात? अभी मैं आपको, आप बैठे हो एक घंटे के ऊपर तक बैठे हो आप यहां पर, मैं एक थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कराना चाहती हूं। हम आपको बोलेंगे आप तीन बारी उठो और बैठो अपनी सीट में, अभी तीन बारी उठो और बैठो। ओके अच्छा, अभी अपने आप को नोटबुक पेन साइड में रखो, सीधा बैठो, अलर्ट बैठो और एक गहरा सांस लीजिए। पकड़ के रहो एक मिनट और धीरे धीरे सांस को छोड़ो, और जैसे सांस को छोड़ते हैं अपना ध्यान को पूरा एकाग्र कर लो। दोबारा एक गहरा सांस लीजिए और छोड़ो धीरे धीरे, पूरी अपनी अंदर की एनर्जी को एकाग्र कर लो। और तीसरी बारी एक गहरा सांस लीजिए और जैसे सांस को छोड़ते हैं और सभी बातें मन से निकालो और मन को इस वर्तमान समय में एकाग्र कर लो। मन को पास्ट की बातों से छुड़ाओ, बस, और सूक्ष्म रूप से अपनी पूरी आंतरिक शक्ति को एकाग्र कर लो इस ब्रुकुटी के बीच में। एक लाइट का सितारा बन जाओ। थोड़े समय के लिए अपना देह का नाम रूप भी भूल जाओ और बिल्कुल वो लाइट का स्वरूप बन जाओ। अभी अपने मन में ये संकल्प 3 बारी दोहराओ कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत चित आत्मा हूं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप शांत चित आत्मा हूं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप शांत चित आत्मा। अपने सिंहासन पे बैठे हुए अपने आप को इस शरीर के मालिक महसूस कीजिए। मैं इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा मास्टर हूं। इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली आत्मा। अभी इसी स्मृति में और इसी सीट से अभी काम लेना है। अभी आप 3 बारी उठेंगे बैठेंगे लेकिन ये संकल्प लेकर के कि मैं आत्मा इस शरीर की मास्टर, मेरी चॉइस से मैं उठ रही हूं और मेरी चॉइस से मैं बैठती हूं। तो ये संकल्प करके आप फिर उठो, फिर वही स्मृति दोबारा संकल्प करके फिर बैठो। उसी स्मृति में रह करके ही 3 बारी उठो और बैठो। अभी वापस स्मृति में टिक जाओ और जो अभी कर्म किया है उसको भूल जाओ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप शांत चित आत्मा। ओम शांति। पहली बार आप जब उठे और बैठे और जब अभ्यास करने के बाद आप जब उठे और बैठे तो उसमें कुछ फर्क लगा? जिसको फर्क लगा हाथ ऊंचा करो। अच्छा, क्या फर्क लगा? पहली बार क्या? पहली बार हलचल से, ठीक है। और दोबारा जैसे स्थिर से कामनेस था, लाइटनेस था, पहली बारी भारीपन था। हाँ, पहली बार मेरे ऑर्डर से आप काम कर रहे थे। हाँ, उसके बाद आप लग रहे कि आप मास्टर हो, आप कंट्रोल कर रहे हैं शरीर को। किसको हल्कापन लगा? दोबारा देखो, ये है अनादिकाल का संबंध, कंबाइंड स्वरूप। मैं आत्मा अपने सीट पे बैठ करके अपनी प्रकृति कर्मेंद्र को चला रही हूं। कितना सरल अनुभव है ये। अभी ये सिंपल साधना है। कितना टाइम लगा हमको? 5-7 मिनट। समझ में आई बात? अपने सीट का काम लेना है। 90% जब हम देह भान में रहते हैं, हम अपनी सीट से काम नहीं लेते हैं, तो मजबूर रहते हैं। किसी ने कुछ बोला, उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने आपको ऑर्डर दिया, तो रस्सी तो मेरे हाथ में थी ना, तो मैं आपको कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि आप अपनी सीट पे नहीं बैठे हो। तो किसी के मन में शायद ये रिएक्शन आया, अरे बहन जी हमको क्यों कह रहे हैं, उठो बैठो 3 बारी, अरे इन लोगों को तो देखो, चलो मन, मुझे नहीं उठना है, छोड़ो ना ये बात। कुछ रिएक्शन आया होगा ना, क्योंकि आप अपने सीट पे नहीं बैठे थे। तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप इसी हालत में ही चल रहे हैं। सीट में न बैठने का कारण ये है, कारण कि हम देह भान के इतने डीप संस्कार है कि हम गुलाम होकर के चल रहे हैं। इसीलिए हमारे रिलेशनशिप में, संबंध में कुछ अचानक होता है तो उसका रिएक्शन जल्दी मन में उठता है ना? लेकिन जब आत्मा अपनी सीट पे बैठी है, बिल्कुल एक अनोखा अनुभव होता है, एक लाइटनेस, एक सरलता, एक इजीनेस। साधना आपकी यहां से शुरू होती है। अभी इसी अवस्था में आप बैठ करके समझो आप भोजन स्वीकार करेंगे, ठीक है? और बाबा की श्रीमत क्या है, विधि क्या है भोजन के समय पे? बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना है, ठीक है? अभी आप ये लंच टाइम पे प्रयोग करना है इसका। अपनी सीट पे बैठ करके मैं मालिक होकर के मैं अपनी कर्मेंद्रियों को चला रही हूं, मैं खिला रही हूं। फिर बाबा की याद में आप अपने आप को खिलाएंगे ना, तो ऐसे महसूस करेंगे कि बाबा आपको स्वयं खिला रहा है। क्योंकि परमात्मा का संबंध आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। तो जैसे आत्मा की स्विच ऑन होती है और हम उस स्मृति में परमात्मा को आह्वान करते हैं, तो सूक्ष्म रूप से ऐसे लगेगा कि बाबा की बाहें आपकी बाहें में आकर के आपको भोजन स्वीकार करा रहे हैं। इतना वंडरफुल अनुभव मेरे साथ हुआ है ये। मुझे याद है बहुत समय पहले जब ज्ञान सरोवर शुरू में हमारा पहला इंटरनेशनल यूथ फोरम, पहली विदेश की रिट्रीट वहां से शुरू हुई, तो बहुत देशों से यूथ के भाई बहने आए थे। और गुरुवार का दिन था जो रिट्रीट की शुरुआत हो रही थी। अभी गुरुवार भोग के बाद टाइम लगता है, तो करीबन 8:30 तो बज गया था और रिट्रीट तो 9:45 शुरू होने वाले थे हॉल में। तो मुझे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका जो कुछ विष्णुपुरी में सॉर्ट आउट करना था, तो मैं कॉटेज छोड़ करके विष्णुपुरी गई, तो मुझे नाश्ते का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वापसी आने में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 9:45 हो चुका था, 10 बजे शुरू करना था। तो मैं जैसे विष्णुपुरी, जहां ट्रांसपोर्ट है ना ज्ञान सरोवर में, तो वहां फिर ऊपर जाने का रास्ता है डाइनिंग के तरफ, तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी नाश्ता करके आऊं या नहीं। लेकिन टाइम देखा तो मैंने बोला छोड़ो, चलो टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे कार्यक्रम शुरू करना है। सामने से दादी जानकी आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने दादी को देखा और दादी ने इशारा किया इधर आओ। इशारा करके मैं जब दादी के पास पहुंची तो दादी ने कुछ नहीं बोला, शायद दादी ने मेरा संकल्प पकड़ लिया होगा। तो दादी ने मुंह देख करके मुझे बताया, अच्छा नाश्ता किया, ऐसे नहीं पूछा कहां जा रही हो, नाश्ता किया। मैं चुप हो गई। फिर मैंने दादी को बोला, दादी अभी प्रोग्राम 10 बजे शुरू हो रहा है ना, मैं वहां जा रही थी। नहीं, दादी ने आपको पूछा आपने नाश्ता किया है? फिर मैं कुछ नहीं बोली। फिर दादी ने तीसरी बारी पूछा तो मैंने ऐसे किया, दादी एकदम चुप हो गए। साइलेंस में मेरा हाथ पकड़ के मुझे यू टर्न लगा करके डाइनिंग के तरफ लेके गए, क्योंकि दादी का नाश्ता करीबन 10:15 बजे होता था रोज। कुछ नहीं बोली। अभी हम क्या बोले, दादी हाथ पकड़ के लेके जा रही है नाश्ते पे, तो मैं भी चुप हो गई। लेकिन मन में तो चलता है ना, ओके चलो बाबा अभी वो प्रोग्राम का, तो हम अपने आप को मना रही थी। तो दादी ऐसे वॉकिंग लेकर के हम डाइनिंग रूम 5 में पहुंच गए थे। दादी का टेबल तैयार था तो दादी ने भाई को इशारा दिया, इसको पहले नाश्ता खिलाओ। दादी कुछ नहीं बोला, बाजू में बैठ गई साइलेंस में। भाई ने नाश्ता पिरोसा और मैंने शुरू किया। मैंने बाय देन अपना मन को शांत बना दिया था, और जैसे मैंने शुरू किया, पता नहीं दादी का क्या क्या तपस्या थी उस समय में, क्योंकि बाजू में बैठ करके बिल्कुल साइलेंस में थी दादी। जैसे मैंने एक स्पून लिया और मुंह में डाला, मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे सूक्ष्म में बाप दादा के बाहें मेरे बाहें में आकर के मुझे नाश्ता खिला रहे हैं। 10 मिनट का ये अनुभव रहा, एकदम जैसे मैं कुछ कर नहीं रही हूं, इतना सुकून मिला कि बाबा स्वयं मुझे खिला रहा है। और जैसे नाश्ता पूरा हुआ, दादी साइलेंस, अभी तुम जाओ। मैं पहुंची 10 मिनट से 1 मिनट पहले, 10 बजे से 1 मिनट पहले, ठीक है, टाइम पे तो पहुंची। और आपको पता है इंडियन टाइम कैसा होता है, इधर उधर 5-7 मिनट हो जाता है, तो सभी और पार्टिसिपेंट से पहले पहुंच गई थी। लेकिन वो अनुभव मैं जब बाद में साक्षी होकर के देख रही थी, तो मैंने सोचा ये जो दादी की तपस्या है, बाबा के साथ कंबाइन रहने की तपस्या, उस तपस्या की शक्ति से उस समय बाबा आह्वान होकर के मुझे ऐसे महसूस कराया है कि मैं बच्ची को खिला रही हूं। ये है प्रूफ, हमारी कंबाइंड अवस्था की तपस्या औरों को महसूस करा सकती है कि आप स्वयं भगवान के साथ हो, भगवान आपकी पालना कर रहा है। नहीं तो यही चाहता है ना दुनिया, क्या चाहता है हमारे से, यही अनुभव चाहता है ना। लेकिन इसका फाउंडेशन ये है, मालिकपना की अवस्था चाहिए। दादियां क्यों हमारी, संग संग में बाबा का साथ था, क्योंकि उनकी अवस्था मालिकपन की अवस्था थी। कभी उन्होंने अपनी सीट छोड़ करके ऐसा उल्टा सुल्टा कर्म नहीं किया है। बाबा की तो पहली श्रीमत है ना बच्चे, अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करो ना। तो इतना मैं देखती हूं मेरी जीवन में, ये एक स्विच ऑन करने की बात है। मैं आपको बताऊं, अभी 24 घंटे में हमको 3-4 दिन के बाद निकलना था, पोलैंड जाना था, वहां पे उनका नेशनल रिट्रीट है, उसके बाद फिर लंदन जाना था। 30 अप्रैल की फ्लाइट है। कल बड़ों से डायरेक्शन मिला है कि आपको नहीं जाना है, यहां पे जो ड्यूटी उठाई है और थोड़ा अर्जेंट काम है तो ये पूरा करके फिर जाना है। अभी आप सोचो चार दिन बचे हैं फ्लाइट से, पूरी नेशनल रिट्रीट हुई है, सारे देश से आ रहे हैं, ठीक है, पूरा बड़ा प्रोग्राम चार दिन का रिट्रीट लगाया है और उसके लिए टिकट बदली करनी है, फिर दूसरे को बिठाना है। और कल रात को ही मुझे समाचार मिला और सब टिकट एजेंसी बंद आज सवेरे से। और मैंने सोचा अंदर से, थोड़ा सा ही सोच चला कि देखो ये टिकट बदलने में भी पैसे जाएगा ना। मेरा एक नियम है, कम खर्च बाला नशीन, और मुझे एक कौड़ी भी ऐसे इधर उधर जावे ना, मेरा दिल विवेक खाता है। तो फिर मैंने क्या किया, आज सवेरे 8:30 बजे ऑफिस खुले, मैं बस ऐसे ही मैं टिक गई। मैंने बोला बाबा आपके निमित्त से मुझे ऑर्डर मिला है, मैं ये समझूंगी कि आपसे ही ऑर्डर मिला है, ठीक है। अभी यहां बैठ करके मैं इसको फोन करती हूं और मुझे एक पैसा भी मुझे इस टिकट के बदलाव में खर्च नहीं करना है। मैंने फोन किया, लाइन पे आया भाई, मैंने बताया ये रेफरेंस नंबर है, क्योंकि वो केवल पैसेंजर के साथ बात करेंगे और ये टिकट तो ट्रैवल एजेंट से नहीं ली हुई थी, स्पेशल टिकट थी। तो मैंने बोला हमको टिकट बदली करनी है, ये करना है। अच्छा मैडम आपको चेंज फी लगेगी और फेयर डिफरेंस भी लगेगा, ठीक है आप बताइए कितना लगेगा। तो पहले जिस फ्लाइट से बोल रहा था कहता है £250 लगेगा। मैंने बोला कोई और फ्लाइट नहीं है क्या, तो बोलता है बहुत डिफिकल्ट है। तो कहता है नहीं ठहरो मैं देखता हूं। तो मुझे होल्ड पे रखा और उस होल्ड पे जो 2 मिनट मुझे रखा, मैंने पावरफुल बाबा को बोला, मैंने बोला बाबा ये एक एक कौड़ी आपकी है, आप अभी इसका प्रबंध करो। और मैं इस भाई को साकाश देती रही फोन पे, बिल्कुल बस मैं मालिक होकर के मैं ऑर्डर कर रही हूं ना, इतना विश्वास था उस समय। जैसे 2 मिनट के बाद आए, हाँ मुझे एक फ्लाइट मिले हैं जिसमें आपको चेंज फी भी नहीं भरनी पड़ेगी और फेयर डिफरेंस भी भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी बुक करना पड़ेगा। वो बुकिंग हो चुकी। फिर बोलता है उसके बाद जब उसने फ्लाइट बदली किया और जिस डेट मैंने मांगनी की वो डेट भी मुझे मिली, फिर उसने बोला और कुछ है, तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मेरी जो दूसरी फ्लाइट थी पोलैंड जाने की, उसी दिन की फ्लाइट थी, वो भी मुझे रिफंड चाहिए उसका, तो क्या मुझे उसका रिफंड मिलेगा। नहीं बहन जी, शायद इसके लिए तो आपको 20% रिफंड मिलेगा। तो फिर मैंने बोला देखो आप क्या कर सकते हैं। तो कहता है आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो, नंबर है वो जो होता है ना फ्रीक्वेंट फ्लायर, जो आप बहुत समय से आप ट्रैवल करते हैं कोई एयरलाइन के साथ तो आपको स्टेटस मिलता है। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास है। तो मैंने इसको नंबर दे दिया, कहते हैं आपके पास तो स्टेटस है इसमें, तो मैं थोड़ा चेक करके बताता हूँ। दोबारा 2 मिनट मुझे होल्ड पे रखा। फिर मैंने बाबा को बोला बाबा फुल रिफंड देना ताकि कोई भी और बहन मेरे जगह में जाए तो इसका फायदा उठाए। लेकिन टोटल मालिक की सीट पे बैठ के काम किया। 3 मिनट के बाद वापस आता है, कहते हैं बहन जी आपकी एलीट स्टेटस के कारण आपको फुल रिफंड मिल सकता है इस टिकट के लिए। कहने का भाव क्या है कि कभी कभी दुनिया के संसार को देख करके, समस्याओं को देख करके हमारे संकल्प की धारा ढीली हो जाती है, भल नहीं हो पाएगा ना, छोड़ दो ना, क्या करें। लेकिन जब मालिक के सीट पे बैठेंगे, अपने नियम को सामने रखेंगे और बाबा को आह्वान करके साकाश देंगे, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूं। अभी जस्ट आने से पहले ये सारा काम पूरा करके आई और इसके ऊपर एक बहन भी मिली, लंदन फोन किया, एक बहन का रिप्लेसमेंट भी मिल गया। क्या है, हम अपनी शक्ति से काम नहीं करते हैं तो प्रकृति भी अपना सुनती नहीं है। आप देखो ना, कोई जज होता है, ठीक है, जज जब अपनी सीट पे बैठ करके जजमेंट पास करता है तो वो लॉ बनता है ना, कंप्लीट लॉ बनता है उस समय, पूरा अपना वस्त्र पहनता है, टोपी पहनता है, जज का जो हैमर होता है, सारी बातें सुन करके मालिक की सीट से जजमेंट देता है, तब वो लॉ बनता है। लेकिन वो सेम जज घर बैठे हुए अपनी बीवी के साथ चाय पीता होगा और उसी समय जजमेंट पास करेगा। व्यक्ति सेम है, अनुभव सेम है, लेकिन उसने जगह बदली की, तो क्या उसको लॉ माना जाता है? नहीं माना जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हम अपनाएंगे कि जो कुछ कार्य करना है, किसी के मत का नहीं सुनना है कि नहीं बहन जी ये पॉसिबल नहीं है, ये आप स्वीकार करेंगे, किसी और का संशय स्वीकार करेंगे, किसी और की मान्यताएं स्वीकार करेंगे, तो गए काम के। उस समय अपनी सीट पे बैठ करके सब बातें साक्षी होकर के देखो, अपना निर्णय लो, अपना चॉइस अपने हाथ में है ना, फिर बाबा को आह्वान करो, फिर ट्राई करो, और आप देखेंगे सचमुच असंभव संभव होता है। मैंने बहुत बारी लाइफ में, सारे विश्व का ब्रह्मांड करते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आते हैं, अचानक आती है, तो उस समय बाबा की मदद कैसे मिलती है? लेकिन मन बुद्धि को तैयार करना होता है इस बातों में, क्योंकि क्या है, अभी मन बुद्धि ऐसे लिप्त हो गई है देह में कि हम रिएक्शन के आधार से चलते हैं, सिचुएशन के इफेक्ट होता है, फिर बहुत लंबा समय लगता है उस इफेक्ट को मिटाने के लिए, फिर पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, लेकिन लंबा समय वेस्ट हुआ ना। और क्या है, ज्यादातर इफेक्ट लेने से वो इफेक्ट भी डिफेक्ट बन जाता है आत्मा में। समझ में आई बात? मैं क्यों इस पे जोर दे रही हूं, क्योंकि ये फाउंडेशन है। आपने सीट पे नहीं बैठे ना, आप सही रूप से बाबा का आह्वान कर पाएंगे ना, बाबा का साथ का महसूस करेंगे ना, आपकी संकल्प शक्ति, संकल्प में शक्ति रहेगी, मजबूरी से काम करेंगे। समझ आई बात? यहां से कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति शुरू होती है, पहले अनादि कंबाइंड स्वरूप आत्मा परमात्मा, फिर आत्मा शरीर, फिर आत्मा परमात्मा, फिर तीसरा कंबाइंड स्वरूप ब्राह्मण सो फरिश्ता, कि जो हम कार्य कर रहे हैं कर्म योगी फरिश्ता बन करके कर रहे हैं ना, यही है ना ब्राह्मण, कर्म योगी फरिश्ता है। और लास्ट विष्णु स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप। तो संगम युग की यात्रा में ये कंबाइंड स्वरूप की जो साधना है, बहुत ही सरल रूप से हम इस यात्रा को पास कर सकते हैं। कितना मीठा अनुभव होता है, देखो आपने शुरू प्रैक्टिस किया ना, इतनी लाइटनेस शुरू हो गई, हल्कापन शुरू हुआ, अपनी हाथ में है लगाम, अपना जीवन अपने हाथ में है, कंट्रोल आ गया, हम रूलर बन गए। और क्या बाप अपने बच्चों का हुक्म नहीं सुनेगा? बाबा बैठा है, मैं आपका गॉडली सर्वेंट हूं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखो, नियम अनुसार हुक्म करना होता है, ऐसे नहीं अपनी इच्छा, जो इच्छा है मन में, वो बाबा नहीं सुनता है, वो बाबा तक पहुंचता भी नहीं है। लेकिन मैंने कौन सा नियम आगे रखा, कम खर्च वाला नशीन। बाबा ये आपका कार्य है, मुझे आपसे हुक्म मिला है, बड़ों से हुक्म मिला है, ये होना चाहिए, लेकिन मेरा ये नियम है, मुझे इसको तोड़ना नहीं है। तो अभी आपको अपने जीवन में पहला फाउंडेशन की केवल दो चीजें सेट करनी है। पहले ये बार बार ये अभ्यास करना है, अपने मालिक की अवस्था सीट पे बैठ करके कार्य करना है। चाहे आप भोजन स्वीकार करो, चाहे आप पैदल करो, चाहे आप किसी के साथ व्यवहार बातें करो, अपनी सीट से काम लो। और दूसरा कि अपने आपके जीवन में आपके नियम सेट करो। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, बिना डिसीजन से गाड़ी नहीं चलती है। जितना भी आप सोचो, निर्णय तो करना पड़ेगा ना, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। उस समय सोचते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कई बारी लोग हम पूछते हैं हमको कि बहन जी हम राइट डिसीजन कैसे लेवे। मैंने बोला कोई राइट डिसीजन नहीं होता है। जब भी आप राइट अवस्था में होते हैं तो हर डिसीजन राइट होता है, क्योंकि अवस्था की ताकत से वो डिसीजन की सफलता प्राप्त होती है। तो इसीलिए ऐसे नहीं सोचो कि कोई राइट डिसीजन, डिसीजन माने कर्म है। जैसे आप समझो यहां से आपको जाना है अहमदाबाद, ठीक है, आप गाड़ी में बैठने हो और गाड़ी का क्या होता है, वो स्क्रीन पे सैटनेव आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जिसपे सारा मैप गूगल मैप डाल करके सैटनेव बताता है, रास्ता बताता है, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, ठीक है, नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन होता है ना, गूगल मैप्स कहो जो भी कहो, जीपीएस। तो इसका हम फायदा उठाते हैं, हम डेस्टिनेशन रखते हैं उसमें, फिर रास्ता बताता है। लेकिन जब रास्ता उल्टा लिया तो फिर क्या करता है, पूरा रीरूट करके वापस आपको सही रास्ते पे बताता है ना। तो घबराहट नहीं होती है कि हम गुम हो जाएंगे। तो वैसे ही डिसीजन लेना, माना भगवान हम आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन मंजिल ऑलरेडी फिक्स्ड है, ड्रामा प्लान अनुसार हमको रास्ता बता रहे हैं। लेकिन सारे अहमदाबाद के साइंस आपको यहां बाहर के तो नहीं मिलेंगे, पहले पालनपुर के साइन आएगा, हाँ, फिर इसके बाद वो कहां और दूसरे शहर के साइन आएगा, फिर लास्ट में अहमदाबाद का साइन आएगा। तो ड्रामा अनुसार आपके सामने जो साइंस आ रहे हैं उसको तो फॉलो करो। तो आपका डिसीजन उस अनुसार, जो मेरे सामने जो सिग्नल्स आ रहे हैं उस अनुसार डिसीजन लो। और ऐसे नहीं डरो कि राइट है रॉन्ग है, अपनी अवस्था को मालिकपन की अवस्था बना करके, बाबा को आह्वान करके आगे बढ़ो। और उल्टा रास्ता भी लिया तो भी आपको साइन मिलेगा उल्टा रास्ता है, नो प्रॉब्लम, यू टर्न बन करके चल वापस जाओ, क्या बड़ी बात है। तो डिसीजन लेने में डर क्यों करते हैं, नो नीड, इट इज ओनली एन एक्शन। जितनी बारी आप एक्शन लेंगे, जितनी बारी डिसीजन लेंगे, उतनी बारी कर्म कर रहे हैं ना। लेकिन अवस्था राइट होनी चाहिए, तब जाकर के आप सरल रूप से मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। जजी ये बात आपको, यस, अच्छा, अभी समय की सीमा को देख करके यहां पे हम विराम करते हैं। थैंक यू दीदियों को भी बहुत बहुत थैंक्स, याद करके बहुत प्यार से दो दिन से बोल रहे हैं, लेकिन आज हुआ। लेकिन हम ये आश जरूर रखते आप सभी के लिए कि जो आप पांडव भवन इस त्यागी तपस्वी भूमि पे आए हैं, आपको मालिकपन का संस्कार बना करके ही जाना है। ये कौन दृढ़ संकल्प करेगा, हाथ ऊंचा करो। बस अभी इस बात को सबकॉन्शियस में प्रोग्राम कर दो, और देखो बाबा कैसे मदद करता है। और हर कर्म में अभी ध्यान रखो, और ये संस्कार बना के जाएंगे ना तो आपको बहुत मदद मिलेंगे उसकी आपकी लाइफ में। ओके, ओम शांति। इनको माइक।
आदरणीय गोपी बहन जी का तहे दिल से योग की भट्टी के सब भाई बहनों की ओर से थैंक्स है, शुक्रिया है। बहुत कम समय में आपने बड़ी ही कीमती बातें समझाई ही नहीं लेकिन साथ साथ उस स्वरूप का अनुभव करा के, और साथ में अगले साल जब तक आप योग भट्टी करने आए आपको होमवर्क भी दे दिया पूरा कंफर्मेशन के साथ कि मास्टर की सीट आपको लेकर के ही जानी है यहाँ से। तो इसलिए शॉर्ट में आपने इतना सुंदर क्लास हम सबके अर्जी पर करना स्वीकार किया तो पुनः पुनः आपका शुक्रिया।
थैंक यू।
अभी हम दो मिनट योग करेंगे, उसके बाद सब भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे।
सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। I'm dying।